नमस्कार, आज हम ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं और खास तौर पर इसका जो क्षमता निर्माण वाला पहलू है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर फोकस रहेगा। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो पूरी प्रक्रिया बताते हैं।
बिल्कुल, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जीपीडीपी सिर्फ कोई कागजी योजना नहीं है। ये असल में पंचायतों को एक तरह का रोड मैप देने की कोशिश है ताकि वो अपनी जरूरतें समझें और उन्हें पूरा कर सकें।
सही कहा, मतलब जमीनी स्तर पर विकास कैसे हो उसका एक खाका तैयार करना। लेकिन कोई भी योजना वो तभी सफल होती है जब उसे लागू करने वाले लोग सक्षम हो, तो यहीं पर ये क्षमता निर्माण वाली बात आ जाती है ना?
निश्चित रूप से, ये तो समझिए इस पूरी कवायद की रीढ़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि योजना बनाने से लेकर उसे लागू करने तक जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हों या समुदाय के लोग हों या फिर सरकारी कर्मचारी, उन सबको जरूरी हुनर और जानकारी देना, बिना इसके अच्छी से अच्छी योजना भी बस धरी रह सकती है।
तो चलिए, इन दस्तावेजों के आधार पर ये जो क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखते हैं कि पंचायतों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए असल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
हाँ, तो सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि जीपीडीपी ये पंचायती राज के तीनों स्तरों पर बनती है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर भी।
अच्छा,
और ये केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का एक मुख्य जरिया है। और कोशिश ये है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं,
हाँ वो 29 विषय,
उन सभी को ध्यान में रखकर एक समग्र योजना बने, इंटीग्रेटेड प्लान।
यानी लक्ष्य काफी बड़ा है, सिर्फ सड़क या नाली बना देना नहीं बल्कि गांव का एक तरह से चौतरफा विकास।
और दस्तावेज भी यही बताते हैं कि इसके लिए पंचायतों की अपनी संस्थागत क्षमता मजबूत करनी होगी, लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी, और सबसे अहम जो आप कह रहे थे, अलग अलग सरकारी योजना और विभागों में तालमेल बिठाना होगा, जिसे ये लोग अभिसरण या कन्वर्जन कहते हैं।
हाँ, ये अभिसरण शब्द बार बार आता है इसमें। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग विभाग या योजनाएं अपनी अपनी धुन में ना चलें, बल्कि मिलकर काम करें।
हाँ,
ताकि उनका मिला जुला असर ज्यादा हो।
हाँ,
जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, मनरेगा है, सब मिलकर गांव की किसी एक जरूरत पर फोकस करें। तो इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए क्षमता निर्माण बहुत जरूरी हो जाता है।
तो ये क्षमता निर्माण, ये सिर्फ ट्रेनिंग या जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच को बढ़ावा देना है। मतलब जागरूकता बढ़े, लोग सच में भागीदारी करें।
बिल्कुल, और ये भी पक्का हो कि योजना भाई तय दिशा निर्देशों के हिसाब से ही बने।
बिल्कुल, और दस्तावेज इसके लिए कुछ रणनीतिक दिशाएं भी देते हैं, जैसे योजना ऐसी हो जो नीचे से ऊपर की ओर बने, जिसमें समुदाय खुद अपनी जरूरतें बताएं, फिर सरकारी विभागों के साथ पंचायतों का तालमेल बेहतर हो, और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं या पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी तकनीकी समझ और वैचारिक स्पष्टता बढ़े।
और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, सिर्फ योजना बनाना ही नहीं, उसे लागू करना, उसकी निगरानी करना और फिर समीक्षा करना, इसका भी एक पूरा सिस्टम हो, ये भी उन रणनीतिक दिशाओं का हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल,
तो ये तो हुई एक बड़ी तस्वीर। अब अगर हम ट्रेनिंग पर आए तो दस्तावेजों में इसके दो मुख्य हिस्से दिखते हैं। पहला हिस्सा शायद ऐसा है जो लगभग सभी प्रतिभागियों के लिए है।
हाँ, पहला भाग एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो नींव तैयार करता है। इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें शामिल हैं, जैसे स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों यानी लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, LSDGs का परिचय।
समझना है कि जो दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्य तय हुए हैं वो गांव के स्तर पर कैसे लागू होते हैं और वो क्यों जरूरी हैं।
अच्छा, तो ये वैश्विक लक्ष्यों को गांव की जमीन से जोड़ने की एक कोशिश है।
हाँ,
और क्या शामिल है इस पहले भाग में?
इसमें देखिए, एक होती है ग्राम समृद्धि और लचीलापन योजना, VPRP कहते हैं उसे, जो मूल रूप से गांव की गरीबी, जरूरतें और जोखिमों का एक सहभागी मूल्यांकन है। तो VPRP और GPDP के बीच क्या संबंध है ये स्पष्ट करना,
ठीक है।
साथ ही GPDP बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अलग अलग चरण क्या हैं वो सब समझाया जाता है।
मैंने देखा कि दस्तावेजों में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी पर खास जोर दिया गया है। महिला सभा और बाल सभा को असरदार तरीके से कैसे आयोजित किया जाए इस पर भी मार्गदर्शन है। ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है क्योंकि अक्सर ये आवाजें पीछे छूट जाती हैं।
निश्चित रूप से ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पंचायतों यानी PRIs और जो समुदाय आधारित संगठन है CBOs जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह,
हाँ हाँ,
उनके बीच सहयोग कैसे बढ़े, योजना बनाने से लेकर निगरानी तक के जो मंच हैं, उनमें इन संगठनों को जगह कैसे मिले, ये सब भी सिखाया जाता है।
और सबसे जरूरतमंद या हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए योजना में प्रावधान कैसे हों, समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता कैसे दी जाए, और फिर आखिर में जो तैयार योजना है उसे जमा कैसे किया जाए, ये सब भी इसी सामान्य ट्रेनिंग का हिस्सा है।
हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत के संसाधन लिफाफे यानी रिसोर्स एनवेलप से परिचित कराना।
संसाधन लिफाफा, रिसोर्स एनवेलप।
हाँ, और यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है, ये संसाधन लिफाफा सिर्फ सरकारी अनुदानों जैसे 15th फाइनेंस कमीशन या मनरेगा MGNREGS तक ही सीमित नहीं है।
अच्छा, तो और क्या शामिल है इसमें?
दस्तावेज इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें पंचायत के अपने जो मानव संसाधन हैं, जैसे कि अलग अलग विभागों के जमीनी कार्यकर्ता, आशा बहने हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कृषि मित्र हैं।
हाँ हाँ, समझ गई, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बिल्कुल। और दूसरे स्रोतों से मिलने वाली संभावित मदद भी शामिल है। ये सोच असल में योजना को ज्यादा यथार्थवादी बनाती है और जमीनी जरूरतों से जोड़ती है कि हमारे पास सिर्फ पैसा ही संसाधन नहीं है, लोग और उनका हुनर भी संसाधन है।
ये वाकई एक अहम बदलाव है सोच में, पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग। अब अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात करें तो उनमें किन विषयों पर ज्यादा जोर रहता है?
मॉड्यूल में GPDP का जो पूरा योजना चक्र है, अभिसरण के क्या सिद्धांत हैं और विषयगत प्राथमिकताएं, खासकर जो LSDG से जुड़ी प्राथमिकताएं हैं वो शामिल होनी चाहिए।
जैसे कौन सी प्राथमिकताएं?
जैसे गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, फिर आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और महिला हितैषी गांव। ये 9 थीम है।
अच्छा, ये 9 थीम्स हैं जिन पर फोकस रहता है। आपने पहले सहभागी योजना की बात की थी, दस्तावेजों में कुछ खास तरीकों या उपकरणों, मतलब पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल्स का भी जिक्र है, जैसे सोशल मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग, ट्रांजैक्ट वॉक, ये असल में है क्या और कैसे मदद करते हैं?
देखिए, ये ना बड़े दिलचस्प तरीके हैं समुदाय के साथ मिलकर गाँव का एक तरह से नक्शा बनाने और उसकी स्थिति समझने के। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये लोगों को अपनी स्थिति पर सोचने और चर्चा करने का मौका देते हैं।
थोड़ा और समझाएंगे, जैसे सोशल मैपिंग क्या करती है?
सोशल मैपिंग में क्या होता है कि समुदाय के लोग मिलकर गांव का एक नक्शा बनाते हैं। उसमें दिखाते हैं कि घर कहाँ हैं, बस्तियां कहाँ हैं, कौन से खास सामाजिक समूह कहाँ रहते हैं, स्कूल किधर हैं, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ हैं, इस तरह की चीजें।
अच्छा,
उनको नक्शे पर उतारा जाता है।
और ट्रांसेक्ट वॉक?
ट्रांसेक्ट वॉक में लोग टीम बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं और जो भी चीजें देखते हैं, अच्छी या बुरी, उनका अवलोकन करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं।
तो ये सारे उपकरण असल में जमीनी हकीकत को योजना में लाने और लोगों की आवाज को शामिल करने का एक ठोस तरीका है। इनके अलावा शायद सीजनल कैलेंडर और पैच प्लानिंग जैसे अभ्यास भी है।
हाँ बिल्कुल, सीजनल कैलेंडर से साल भर में क्या क्या होता है, कब खेती होती है, कब बीमारियां फैलती हैं, कब पानी की कमी होती है, ये सब समझा जाता है। और पैच प्लानिंग मतलब किसी छोटे खास इलाके पर ध्यान केंद्रित करना।
ठीक है,
और एक और बात, पंचायतों को कुछ संकल्प लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
संकल्प मतलब रेजोल्यूशन?
हाँ, मतलब वो किसी खास विषय पर, जैसे मान लीजिए बाल हितैषी गांव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें, फिर उस विषय से जुड़ी खास ट्रेनिंग भी डिजाइन की जाती है।
तो ये हुआ ट्रेनिंग का दूसरा भाग जो विषय विशिष्ट होता है। इसके अलावा एक और तरह की ट्रेनिंग पर काफी जोर है जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ट्रेनिंग।
हाँ, ये डिजिटल पहलू अब बहुत अहम है। ये ट्रेनिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो GPDP का सारा डेटा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर डालने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे MIS ऑपरेटर होते हैं या ग्राम स्तरीय उद्यमी VLEs। लक्ष्य यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो GPDP स्वीकृत हुई है उसकी पूरी जानकारी समय पर और सही सही ऑनलाइन दर्ज हो जाए।
हाँ, इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और योजनाओं की प्रगति पर नजर रखना भी आसान होगा। इस ई ग्राम स्वराज ट्रेनिंग के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? क्या सीधे VLEs को ट्रेनिंग दी जाती है?
नहीं, प्रक्रिया थोड़ी व्यवस्थित है। पहले राज्य स्तर पर कुछ मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं, जिसे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स या TOT कहते हैं।
अच्छा, TOT।
हाँ, फिर ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर जाकर VLES के लिए ट्रेनिंग सत्र आयोजित करते हैं, और इस ट्रेनिंग में सिर्फ GDP पोर्टल ही नहीं बल्कि ई ग्राम स्वराज EGS का जो पूरा सिस्टम है, पंचायत संपत्ति सूची, पंचायत एसेट्स इन्वेंट्री PAI।
PAI ये क्या है?
ये है पंचायत की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड, मतलब पंचायत के पास क्या क्या एसेट्स हैं, स्कूल बिल्डिंग, पंचायत घर, सड़कें, हैंडपंप, उन सबका रिकॉर्ड।
अच्छा अच्छा।
और मीटिंग वगैरह के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल या ऐप हैं, उनका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है।
तो फोकस सिर्फ डेटा एंट्री पर नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को समझने पर है। इन ट्रेनिंग मॉड्यूल में फिर क्या क्या सिखाया जाता है, मतलब प्रैक्टिकली?
इसमें ये सिखाया जाता है कि पोर्टल पर जो मास्टर एक्टिविटी लिस्ट दी हुई है उसमें से सही गतिविधियां कैसे चुनें, अलग अलग योजनाओं से मिलने वाले पैसे को मिलाकर बजट कैसे बनाएं और आवंटित करें, गतिविधियों को अलग अलग विषयों के हिसाब से कैसे बांटे, जैसे लिंग आधारित, आजीविका से जुड़ी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर, महिला स्वास्थ्य, बाल विकास, इस तरह से।
अच्छा।
असल में ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाने के लिए जरूरी है, और इसके लिए VLEs को व्यापक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, हैंड ऑन जैसे कहते हैं।
तकनीक अपनी जगह है, लेकिन हमने पहले विभागों के बीच तालमेल यानी अभिसरण की बात की थी, उसे जमीन पर उतारने के लिए भी कुछ होता है क्या?
हाँ, उसके लिए दस्तावेज संयुक्त कार्यशालाओं यानी ज्वाइंट वर्कशॉप्स की बात करते हैं। इसमें पंचायती राज विभाग DOPR और जो दूसरे संबंधित विभाग हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
इसका मकसद क्या होता है?
मकसद यही है कि योजना बनाने और उसे लागू करने में इन सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बने, सब एक दूसरे की योजनाओं और प्राथमिकताओं को समझें और मिलकर काम करने के रास्ते निकालें,
ताकि डुप्लीकेशन ना हो और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो।
बिल्कुल, इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और असर भी ज्यादा होता है।
और आखिर में पंचायतों के जो चुने हुए सदस्य हैं यानी सरपंच और पंच, उनके लिए भी खास ट्रेनिंग सत्र होते हैं।
जी हाँ, इन सत्रों का फोकस इस बात पर होता है कि ये चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो विभिन्न सरकारी विभागों जिन्हें लाइन डिपार्टमेंट्स कहते हैं, उनके साथ कैसे बेहतर सहयोग कर सकते हैं और अभिसरण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।
अच्छा।
उन्हें सिखाया जाता है कि वे अपने गाँव के लिए एक समन्वित, एक एकीकृत योजना बनाने में कैसे नेतृत्व करें, कैसे लीडरशिप दिखाएं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी क्षमता निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ कुछ ट्रेनिंग सेशंस नहीं है, ये एक तरह से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा समावेशी बनाने का एक बड़ा प्रयास है।
हाँ।
ये सुनिश्चित करता है कि GPDP सिर्फ एक दस्तावेज बनकर न रह जाए बल्कि गाँव में सच में कुछ बदलाव लाए।
बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका सार है।
तो ये थी GPD के क्षमता निर्माण वाले हिस्से की एक झलक जो हमें इन दस्तावेजों से मिलती है। ये साफ है कि एक असरदार विकास योजना के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है, बल्कि उस योजना को हकीकत बनाने वाले हर इंसान का सशक्तिकरण, उसका प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है?
देखिये, इसका मतलब ये है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए एक सोची समझी, एक व्यवस्थित कोशिश हो रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे सहभागी योजना यानी लोगों की भागीदारी, तकनीकी कौशल यानी डिजिटल लिटरेसी और प्लानिंग स्किल्स, विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच तालमेल यानी कन्वर्जेंस, और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, इन सबको एक साथ गूंथने की कोशिश की जा रही है।
वाकई ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शासन और विकास की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अलग अलग स्तरों पर काम हो रहा है। इसने निश्चित रूप से सोचने के लिए काफी कुछ दिया है।
और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार शायद ये हो सकता है, जरा सोचिए, जब स्थानीय समुदायों, उनके प्रतिनिधियों और जमीनी कार्यकर्ताओं को इस तरह के ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस किया जाता है, तो उसमें स्थानीय शासन और विकास की पूरी तस्वीर को बदलने की कितनी बड़ी क्षमता छिपी है।
एक बहुत विचारणीय प्रश्न, क्या ये सचमुच सत्ता के विकेंद्रीकरण और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।